आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे अधिवक्ता मधुकर जी गायकवाड़ और आप सुन रहे मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। नमस्कार सर जी।
हाँ साहब नमस्कार, और सर्वप्रथम आपके मोबाइल वाणी को बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र की समस्याओं को सीधा दिल्ली तक पहुंचाने का एक माध्यम बन गया आपका मोबाइल वाणी, और विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और इस कालावधि में अपने साथ जो बातचीत होगी उसमें मैं आपके मोबाइल वाणी के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराऊंगा जिसने समाज में जन जागृति लाने का काम किया। जी
सर जी, आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और यह दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, तो हम आपसे आज इस अवसर पर जानना चाहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस साथ ही साथ वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस संबंध में आप हमारे मोबाइल वाणी के श्रोताओं को विशेष जानकारी प्रदान कीजिए।
जी जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि आपका जो मोबाइल वाणी ऐप है जिसके माध्यम से आप समाज के बीच में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो स्थानीय स्तर पे बड़े स्तर पर बातचीत होती है, विश्व स्तर पर बातचीत होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप स्वयं, मैं खास करके दिनकर जी पातुर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जंगल सत्याग्रह की जो स्थली है वहां जाके एक ऐसा सकारात्मक पक्ष समाज के बीच में रखते जिससे पर्यावरण संरक्षित रहे, क्योंकि आदिवासी समाज के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं जहाँ जंगल जमीन की बात होती है, उस जंगल जमीन की बात को संरक्षित रखने के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और उसमें मोबाइल वाणी ऐप के माध्यम से आप देखिए, आज मोबाइल वाणी ऐप केवल मध्य प्रदेश तक ही नहीं है दिनकर पातुरकर जी, अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक इनका विस्तार हो गया और ये सीधे संवाद करने की बात है। तो मैं इस प्रकृति पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि आज जो हम लोग प्रकृति के जिस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उस रिजल्ट के प्रति लोगों को जागृत करने में आपकी जो मोबाइल वाणी है एक सकारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बनके जा रही है। जी
सर जी, जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जहां पर्यावरण की हम बात करती है तो वहाँ सीधा सीधा जल जंगल जमीन से हम रूबरू होते, तो हम आपसे इस अवसर पर जानना चाहेंगे कि जंगलों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए और जंगलों से प्राप्त वनोपज से लोग अपने आजीविका का साधन किस तरह करते हैं, इस संबंध में भी हम आपसे आज जानना चाहेंगे।
देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, मैं अभी पातालकोट गया था कुछ दिन पहले और आपको बता दूं कि भारत सरकार ने पातालकोट के संरक्षण और वहां के आदिवासी समाज को श्री अन्न योजना से जोड़कर वहां की जो वन उपज है उसको, उस वन उपज को जो, क्योंकि भारत सरकार जिस वन खाद्यान्न की बात करी अभी 2023 को अन्न वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे, तो जो आदिवासी मूल के जो लोग हैं और हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पे जो कोदो कुटकी है उसको विश्व स्तर पे स्थान देके उसको एक उपभोग की वस्तु बना के हमारे लिए एक रोजगार का सृजन करने का काम करे। दूसरी चीज, जब ये वन संरक्षण के मतलब ये जो अन्न के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल होगी तो इसके लिए हम अपने वनों को संरक्षित करेंगे। अभी 2019 की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हम लोग का जो वन क्षेत्र था 24.56% था, लेकिन हम जिस तरीके से वनों की अवैध कटाई कर रहे साहब, फिर से हम लोग 21% पे आ गए, जबकि संतुलित पर्यावरण के लिए 33% वन होना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश इस प्रतिशत के थोड़ा सा लगभग है, 30% हम लोग के वन संरक्षित है, लेकिन मैं वनों के संरक्षण की बात केवल एक प्रशासनिक बात नहीं करूंगा, यहाँ पे हम सब की जिम्मेदारी। अभी देखिए मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हमने पिछले बार बरसात में 4-5 पेड़ लगाए थे, हम लोग सुबह घूमने जाते इधर अपने पिपला से कुछ गांव उधर तरफ, तो हमने वहां पे पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों का संरक्षण की जिम्मेदारी दी थी, तो वो बहुत अच्छे हो गए। और सबसे बड़ी बात मैंने उसके सामाजिक पक्ष में जोड़ा, जैसे एक सज्जन है जो ड्राइवर है गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने अपने पापा जी की समाधि स्थल बनाई थी, तो मैंने कहा ठीक है आप पापा जी के समाधि स्थल पर सुबह आते हैं लेकिन यहाँ एक पेड़ लगाइए। तो हमारे एक मित्र है श्री रामराव जी कड़ू और मैं और एक हमारे यहाँ वृक्ष मित्र है अरुण ठाकरे सर और एक पवार साहब है, उन्होंने मिलके उस वृक्ष का रोपण किया, कि इस तरह के जो समाधि स्थल यदि आप बनाते तो समाधि स्थल के संरक्षण के लिए वहां पे एक पेड़ लगाए, तो ये जो प्रोसेस है समाज का हित करे। वैसे हमने कहा कि जब जन्मदिन मनाते आप तो जन्मदिन पे हम लोग प्रकृति को प्रकृति के नजदीक जाते, एक पेड़ लगाते, ये जो हमारी प्रोसेस है साहब ये बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल है 48 का ये केवल एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन हम लोग समाज को और अपने धर्म को, क्योंकि हमारे धर्म में देखिए तुलसी का जो पेड़ होता है उसको संरक्षित करते। अभी रामाकोना में जो वहां पे जो घाट है वहां पे दिनकर जी पातुकर, गुरवे सर, नाचनकर सर और वहां के समाज के लोग नदी के संरक्षण के लिए और वहां के जो रेत का अवैध उत्खनन है उसको रोकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रकृति का अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण का एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम सब लोग निभा रहे हैं। तो यहाँ समाज और धार्मिक संस्था सभी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, केवल प्रशासनिक स्तर पे ही केवल वनों की संरक्षण नहीं हो सकता है, और ये हम सब अपनी जिम्मेदारी को ले तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा सुरक्षित रहेगा। अभी देखिए कर्नाटक सबसे वन चल रहा, किसी समय हम लोग मध्य प्रदेश वाले सबसे ऊपर थे वन में, लेकिन अभी कर्नाटक हमारे सबसे ऊपर, तो कुछ ही राज्य है जहाँ पे वनों को बहुत अच्छा संरक्षित किया जा रहा है। मिजोरम की बात करें तो बहुत अच्छा वनों का प्रतिशत है वहां पे, तो ये सब वहां पे प्रकृति को उन्होंने अपना जीवन का हिस्सा बनाया इसलिए सुरक्षित है। तो जीवन का हिस्सा बनाए तो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रकृति संरक्षित रहेगी। जी
सर जी, जैसा कि देश भर में मोबाइल वाणी झारखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मोबाइल वाणी विगत कुछ कई वर्षों से कार्य कर रही है, और मोबाइल वाणी के माध्यम से मोबाइल वाणी पर कुछ अभियान संचालित हो रहे, जैसे मेरी भी आवाज सुनो, जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले नुकसान, गांव आजीविका और हम, इन विषयों पर मोबाइल वाणी हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर विषय विशेषज्ञों की राय प्रसारित करवाता है। तो इस संबंध में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोबाइल वाणी द्वारा यह जो नवाचार किया जा रहा है यह आपको कैसा लगा, और इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए आपका नवाचार जो है बहुत ही, उसके लिए आपका साधुवाद दिनकर जी आपका, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर है। आप देखिए अभी आपने पिछले कई महीनों में आपने जो विषय के विशेषज्ञ लोग हम लोग सुनते हैं उनको, और उनके माध्यम से जनमानस की समस्याओं को जिस तरीके से उन विशेषज्ञों के सामने आप रखते हैं चर्चा के अंतर्गत, तो वो विषय फिर जनमानस के बीच में उसके सवाल और जवाब के बीच में जब होता है और उसके उत्तर हमको मिलते हैं तो जन जागृति का एक काम होता है। दूसरी चीज एक मैं देखा कि आपका जो मोबाइल वाणी है वो अक्सर करके मानव समाज के उन पहलुओं को उठाता है, खास करके पर्यावरण संरक्षण का दायित्व आप बहुत अच्छे से निभा रहे, क्योंकि जन जागृति भी एक बहुत बड़ा बात है। जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग समाधि स्थल पे एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये आपके मोबाइल वाणी के माध्यम से जो आप विशेषज्ञ लोगों को बुलाते हैं उनकी बातें सुन के हमारे अंदर ये विचार धारणा पैदा हो गई। आपने देखा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप जो बातें करते चर्चाओं के दौरान, तो मैं खुद जो है जब भी अपने संवाद संबोधन के लिए कहीं जाता हूं तो आपकी मोबाइल वाणी के बारे में और खास करके पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखा होगा कोरोना काल के बाद हृदयघात अटैक से मतलब बहुत ज्यादा मृत्यु, आपने देखा होगा जितने हम लोग कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई उससे ज्यादा हर साल 59 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमको जितना ज्यादा प्रकृति के नजदीक जाएंगे, अभी देखिए पचमढ़ी जाइए आप बहुत अच्छा लगता है, पातालकोट जाइए बहुत अच्छा लगता है, हम लोग प्रकृति से दूर हो जाते हैं। अभी देखिए पूरा हमने कॉन्क्रीट का जंगल निर्मित किया, हर जगह खेत जमीन कम होती जा रही, जंगल कम होते जा रहे और निवास आवास स्थल बढ़ रहे। तो आप खुद देखिए कि अभी टेम्परेचर 47 डिग्री हो गया, 50 दिन हो जाएगा उस दिन पक्षियों का मरना चालू हो जाएगा, और अभी मैं डेली पार्टनर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कई पक्षी ऐसे पड़े रहते हैं, तो कई बार हमने उनको पानी तक की पिलाए। तो इसका रीजन है, कई जानवर अभी देखा मैना खापा का जो जंगल है वो नील गाय, हिरन ये सब पानी के लिए आते, कई बार एक्सीडेंट भी होता है गाड़ियों के उनके माध्यम से। तो ये इसका कारण है कि हम कहीं ना कहीं उनके प्राकृतिक स्रोत को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मानव समाज को अटैक कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ कुछ साल पहले था तो वहां देखा कि हाथियों का जो जमघट है वो गांव के ऊपर आक्रमण कर रहा था। इसका रीजन क्या है, हम उसके प्राकृतिक आवास को छेड़ेंगे तो निश्चित है वो हमारी तरफ आक्रमण करेगा। तो प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये जो मोबाइल ऐप है ये बहुत छोटा सा साधन है लेकिन बड़ा काम करता है। इसको हम छोटी बात मतलब एक बड़ा वाक्य कहे कि छोटी चीज बड़ा धमाका वाली चीज है। तो मोबाइल वाणी और खास करके दिनकर जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जन जन के बीच में जाके जो मुद्दे उठाते वो सीधे दिल्ली और सीधे जिला प्रशासन और सीधा भोपाल तक कनेक्ट होते, क्योंकि आपका जो कार्यक्रम है ये मेरी आवाज सुनो वो सीधा रूबरू कराता है जनता की समस्याओं को प्रशासन से। और इसके माध्यम से मैंने देखा कि अभी आपने इधर रामाकोना साइड आपने जो अन्न वितरण का कार्यक्रम हो रहा था, कॉलेज की समस्याओं का, बच्चों के बीच में जो अतिथियों के समस्याओं का जो मसला था और राशन वितरण का मसला था, रेत घाट का मसला था, आपने उन मोबाइल वाणी से उठा के सरकार को जो सचेत किया और जिस तरीके से कार्रवाई हुई, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल वाणी समाज के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक बनती जा रही है। जी
सर जी, जैसा कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं और क्योंकि मोबाइल वाणी भी विगत कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन को लेकर अपना अभियान चला रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में हम अपने पर्यावरण को किस तरह संतुलित रख सके, इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए।
देखिए अभी एक बैठक में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचज वाला कॉन्सेप्ट लाया था, उन्होंने मिशन लाइफ का एक कार्यक्रम लाया है। उन्होंने मिशन लाइफ का मतलब हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हर चीज, जैसे हम लोग मटके में पानी पीते थे, कूलर की जगह हम लोग प्रकृति के संरक्षण में सोते थे रात में, तो उनका ये जो सुझाव है मिशन लाइफ ये वो उसी उद्देश्य को, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग, जैसे मैं खुद अभी देखा कि मटके का पानी हम पियो तो सांस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में पर्यावरण से जितने नजदीक जाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सुबह अपनी जो मॉर्निंग वॉक होती है वो करें, योगा करें, ध्यान करें, और पीपल का जो पेड़ है वो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है उसके संरक्षण में रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और साथ ही साथ स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हम अपने स्तर पे जनमानस के बीच में एक दूसरे को प्रेरित करें पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि यदि हालांकि हरियाली महोत्सव गवर्नमेंट जुलाई माह में मनाती है, पेड़ लगाती भी है, पर कितने पेड़ जगती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यदि आप एक पेड़ को लगाते हो तो उसकी फोटो आप भेजते हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ये बहुत अच्छी पहल है, इससे समाज जुड़ा। और मैं खुद अपने स्तर पर कहना चाहूंगा कि हम अपना दायित्व समझ के हम जहाँ, जैसे अभी देखिए वन यूज प्लास्टिक का जो उपयोग है, हम लोग कोशिश करें कि यदि प्लास्टिक यदि आपने यूज की भी है तो उसको सही जगह पे उसका डंप करें। हमारे यहाँ पीपला नारायणवार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ की जो अध्यक्षा है श्रीमती अरुणा चौधरी जी और CMO साहब जो है बहुत अच्छा काम करे, अभी मतलब पीपला बहुत अच्छा साफ सुथरा हो रहा है, पांडुना बहुत अच्छा साफ सुथरा हो रहा है, मोलोदी खेड़ा है आपका, मतलब मैंने एक रंगारी गांव देखा बहुत अच्छा साफ सुथरा गांव, तो ये एक नई पहल, क्योंकि स्वच्छता केवल पेड़ लगाने में नहीं है, पेड़ तो हमको संरक्षण देगा लेकिन साथ साथ हम लोग स्वच्छता पे भी ध्यान दे। अभी हमारा जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 15 पीपला में एक छिंदवाड़ा के सज्जन आए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि बोले आपका ये इलाका कितना साफ सुथरा रहता है, तो उसका रीजन है कि यहाँ की जो गृहणियां है वो एक दायित्व लेती है कि अपने घर के आसपास का इलाका साफ रखना है, तो ये भावना हम लोग ले और हम लोग खुद भी कोशिश करते कि कचरा हम इधर उधर न डालें, तो ये जो वार्ड नंबर 15 है पूरे पीपला में बहुत साफ सुथरा है, तो ये जिम्मेदारी ले, ये हमारा एक व्यक्तिगत दायित्व बनता है और ये अपने स्तर पे करके हम लोग अपने पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं, अपने आसपास के इलाके के स्वच्छ रखते हैं। और खास करके मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो शराब का सेवन करते वो लोग सड़कों पे बोतल न फोड़े, क्योंकि अभी सरकार ने नई शराब नीति के तहत कह दिया कि आते में आप शराब नहीं पियेंगे, लेकिन ये जो शराब का नशा करने वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये सड़कों पे बोतलें फोड़ते हैं, इससे आवागमन मतलब जो आवागमन करने वाले लोग हैं उनके साथ कई बार ये कांच पैरों में चुभने से कई बार नुकसान होता है, तो मेरा इस निवेदन है उनसे। और साथ ही साथ जो लोग शराब पीते हैं वो कोशिश करें, अब उनको आते खत्म हो गए तो पेड़ के नीचे जाके शराब पीते, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने शराब के बोतल के आड़ में एक पेड़ लगा ले और बढ़िया उसके नीचे बैठ के शराब पिए तो बहुत अच्छा काम होगा। जी
सर जी, आज इस अवसर पर आपसे मैं एक अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक अधिवक्ता होने के साथ साथ ये कोचिंग क्लासेस का संचालन भी आप पांडुना और सौसर में कराते हो, इसके अलावा सर्वप्रथम आप एक कृषक हो और कृषक होने के नाते पर्यावरण को संतुलित रखने में हम आपसे जानना चाहते हैं कि कृषि किस तरह लाभप्रद सिद्ध होती है।
देखिए साहब, मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे यहाँ पे परंपरागत खेती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारा परंपरागत खेती का जो तरीका है बदल रहा है, हम लोग जैविक खाद केचुआ खाद यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिक्किम ऐसा राज्य था हमारे लिए पूरे देश में जिसने पहली बार इस जैविक खाद का यूज करके पूरे भारत को एक संदेश दिया है। तो ये जो जैविक खाद का यूज होने से हमारी जो भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ रही है। हालांकि कुछ समय से देखा था कि जहां 15 क्विंटल कपास होता था उस खेत में अब 2-2 क्विंटल कपास होने लग गया। तो उसका रीजन है कि हम लोग ज्यादा केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमको केमिकल का यूज कम करना है। हम लोग जो अपनी परंपरागत खेती के अंदर जो गाय का गोबर यूज करते थे उसको बढ़ाए, क्योंकि गाय हम लोग के खेती में दो तरह से फायदा हो सकता है। यदि हम लोग गाय का उपयोग करते हैं तो हमको खाद मिलेगा, दूसरी चीज हमको दूध मिलेगी, और हमको केवल दूध नहीं बेचना, दूध को वैल्यूएट करना, मतलब उसकी कोई नई चीज पैदा करके जैसे दही पनीर मट्ठा ये बेच के तो किसान को आय भी होगी, साथ ही साथ उससे गोबर प्राप्त होगा और उस गोबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। एक दूसरी चीज हम लोग को ये करना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा क्षमता की भारत सरकार बहुत बार कह रही है कि उसकी जांच करे कि कितना पानी उसमें चाहिए, कितना खाद उसमें मिलाना चाहिए। तो ये यदि हम चीजें करते तो इससे बहुत बड़ा योगदान हमारे पर्यावरण को संरक्षण में रखने में लगेगा। और साथ ही साथ हम लोग अब परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ औद्योगिक तरीके से खेती को अपनाएं जिसमें हमारे पानी के कम खर्च होता है, खाद का कम खर्च होता है, तो इससे पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करें कि गाय के गोबर का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल खाद के रूप में करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करें, तो प्रकृति हमारी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, हमारा खेत सुरक्षित रहेगा और हम लोग को स्वास्थ्यपूर्ण प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिससे हमारे खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा जीवन प्रकृति के संरक्षण में बहुत अच्छे से फल फूलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आपने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोबाइल वाणी से रूबरू होकर न कि पर्यावरण दिवस पर बल्कि विविध बिंदुओं पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता है तथा मोबाइल वाणी परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
जी जी धन्यवाद साहब, नमस्कार
नमस्कार।